नमस्ते, मैं आराफ हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स इन जावा, माइकल टी गुडरिच, रॉबर्टो टमासिया और माइकल एच गोल्डवासर की कंप्यूटर विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है। इसका उद्देश्य केवल जावा में तैयार कोड सिखाना नहीं, बल्कि यह समझाना है कि डेटा को किस रूप में रखा जाए, किसी समस्या के लिए उपयुक्त एल्गोरिदम कैसे चुना जाए और उस चुनाव की दक्षता को कैसे परखा जाए। पुस्तक आरंभ में जावा की आवश्यक बुनियाद और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन को स्थापित करती है, फिर एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, डेक और लिस्ट जैसे मूल ढांचों से आगे बढ़ती है। इसके बाद ट्री, प्राथमिकता क्यू, मैप, सर्च संरचनाएं, ग्राफ, सॉर्टिंग और एल्गोरिथमिक विश्लेषण जैसे विषय आते हैं। इसकी विशेष पहचान यह है कि हर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को एक जावा इंटरफेस के रूप में और उसके व्यावहारिक रूपों को क्लासों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस तरह पाठक उपयोग, डिजाइन और कार्यक्षमता तीनों स्तरों पर डेटा संरचनाओं को समझता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को जावा इंटरफेस से जोड़ने की डिजाइन पद्धति। पुस्तक की केंद्रीय पद्धति एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप अर्थात एडीडी और उसके वास्तविक इम्प्लीमेंटेशन के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखना है। एडीडी यह बताता है कि किसी संरचना से कौन से ऑपरेशन मिलने चाहिए, जैसे स्टैक में पुश, पॉप और टॉप। वह यह निर्धारित नहीं करता कि ये ऑपरेशन एरे से होंगे या लिंक्ड नोड्स से। जावा इंटरफेस इस सार्वजनिक अनुबंध को व्यक्त करता है, जबकि अलग क्लासें उस अनुबंध को अलग आंतरिक तकनीकों से पूरा कर सकती है। यह विभाजन पाठक को केवल एक उत्तर याद करने के बजाय डिजाइन के विकल्पों पर विचार करना सिखाता है। मसलन, क्यू का उपयोग करने वाले प्रोग्राम को यह जानने की जरूरत नहीं होती कि उसके पीछे सर्कुलर एरे है या लिंक्ड संरचना। यदि अपेक्षित उपयोग बदल जाए तो इम्प्लीमेंटेशन बदला जा सकता है, जबकि बाहरी कोड अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। यही सिद्धांत ढीले युग्मन, पुनः उपयोग और परीक्षण को बेहतर बनाता है। पुस्तक जावा की जेनेरिक्स, इनहेरिटेंस, एक्सेप्शंस और नेस्टेड क्लासों को भी इसी संदर्भ में रखती है। इसलिए भाषा की विशेषताएं अलग अध्यायों में बिखरे नियम नहीं रहती, बल्कि विश्वसनीय डेटा संरचना पुस्तकालय बनाने के औजार बन जाती है। यह दृष्टि जावा कलेक्शंस फ्रेमवर्क को समझने के लिए भी उपयोगी आधार देती है, पर पाठक को उसके अंदर के डिजाइन निर्णयों तक ले जाती है। दूसरा, एरे और लिंक्ड लिस्ट के बीच समय, स्थान और उपयोग का वास्तविक संतुलन। मूल डेटा संरचनाओं की चर्चा में पुस्तक एरे और लिंक्ड लिस्ट को केवल दो अलग कंटेनर नहीं मानती, बल्कि अलग लागत मॉडल वाले विकल्पों के रूप में रखती है। एरे में किसी इंडेक्स पर पहुंचना सामान्यतः स्थिर समय में संभव है, क्योंकि तत्व लगातार मेमोरी स्थानों में रखे जाते हैं, पर बीच में नया तत्व डालने या हटाने पर कई तत्वों को खिसकाना पड़ सकता है। दूसरी ओर, लिंक्ड लिस्ट में नोट्स के लिंक बदलकर ज्ञात स्थान के पास जोड़ना या हटाना कुशल हो सकता है, लेकिन किसी क्रमांक वाले तत्व तक पहुंचने के लिए क्रम से चलना पड़ता है। पुस्तक सिंगली लिंक्ड, सर्कुलर लिंक्ड और डबली लिंक्ड लिस्ट के माध्यम से दिखाती है कि एक अतिरिक्त लिंक या अंतिम नोड का संदर्भ कौन से ऑपरेशन आसान बनाता है और बदले में कौन सी जटिलता बढ़ाता है। डबली लिंक्ड लिस्ट पीछे की ओर चलने और किसी ज्ञात नोड को हटाने में सहायक है, लेकिन हर नोड में अतिरिक्त संदर्भ और लिंक को सही रखने की जिम्मेदारी जोड़ती है। इस तुलना का निष्कर्ष यह नहीं कि कोई एक संरचना हमेशा श्रेष्ठ है। सही विकल्प इस पर निर्भर है कि पहुंच, खोज, शुरुआत या अंत पर बदलाव, बीच में बदलाव और मेमोरी लागत में किसे प्राथमिकता है। यही तर्क प्रोग्रामर को किसी तैयार कंटेनर का चुनाव कारण सहित करने योग्य बनाता है। तीसरा, असिम्प्टोटिक विश्लेषण से मशीन से स्वतंत्र दक्षता का आकलन, एल्गोरिदम एनालिसिस वाला भाग पुस्तक को केवल प्रोग्रामिंग अभ्यास से आगे ले जाता है। यहाँ प्रश्न यह नहीं है कि कोई कोड एक खास कंप्यूटर पर कितने मिलीसेकंड चला, बल्कि यह है कि इनपुट का आकार बढ़ने पर उसके समय और स्थान की वृद्धि कैसी होगी। पुस्तक प्रायोगिक अध्ययन की उपयोगिता स्वीकार करती है, लेकिन बताती है कि हार्डवेयर, कंपाइलर और परीक्षण इनपुट के कारण केवल मापे गए समय से सामान्य निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, इसलिए असिम्प्टोटिक विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। बिगो, बिगोमेगा और बिग थीटा जैसे संकेतों के जरिए एल्गोरिदम की वृद्धि दर को प्रमुख पद के आधार पर समझा जाता है। स्थिर समय, लघुगणकीय समय, रैखिक समय, रैखिक लघुगणकीय समय और द्विघात समय जैसी श्रेणियां किसी समाधान की विस्तार क्षमता का व्यावहारिक संकेत देती है। पुस्तक सरल औचित्य तकनीकों और पुनरावर्ती प्रक्रियाओं के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट करती है कि लूप, नेस्टेड लूप और रिकर्सिव कॉल की संरचना लागत को कैसे प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, दो समाधान छोटे इनपुट पर समान लग सकते हैं, लेकिन एक की द्विघात वृद्धि बड़े डेटा पर अनुपयोगी हो सकती है। इस अध्याय का मूल्य इसी निर्णय क्षमता में है। पाठक प्रदर्शन के दावों को माप, मॉडल और तक तीनों के आधार पर जांचना सीखता है। चौथा, रिकर्शन, स्टैक और क्यू के जरिए नियंत्रण प्रवाह को समझना। पुस्तक रिकर्शन को केवल किसी मेथड का स्वयं को बुलाना कहकर नहीं छोड़ती, वह आधार स्थिति समस्या को छोटे रूप में घटाने की प्रक्रिया और हर रिकर्सिव कॉल के लिए बनने वाले निष्पादन संदर्भ को साथ लेकर चलती है। इस कारण पाठक समझता है कि सही रिकर्सिव डिजाइन में प्रगति और समाप्ति दोनों क्यों जरूरी है। रिकर्शन के विश्लेषण, टेल रिकर्शन को हटाने और अनियंत्रित रिकर्शन की चर्चा यह भी दिखाती है कि सुरुचिपूर्ण दिखने वाला समाधान हमेशा संसाधनों की दृष्टि से उचित नहीं होता। स्टैक इस विचार का ठोस डेटा संरचनात्मक रूप है। लास्ट इन फर्स्ट आउट नियम के कारण यह मेथड कॉल, अभिव्यक्ति जांच, पूर्ववत कार्य और बैकट्रैकिंग जैसी स्थितियों के लिए स्वाभाविक मॉडल बनता है। क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नियम होने से वह क्रमबद्ध अनुरोधों, बफरिंग और स्तर आधारित प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त बनती है। डेक दोनों सिरों से जोड़ने और हटाने की सुविधा देकर इन दोनों मॉडलों के बीच लचीलापन देती है। पुस्तक इन संरचनाओं को एरे और लिंक्ड रूपों में लागू कराती है, जिससे अमूर्त व्यवहार और आंतरिक लागत का संबंध स्पष्ट होता है। विशेष रूप से सर्कुलर एरे क्यू में खाली स्थान को दोबारा उपयोग करने की तकनीक दिखाती है कि सही प्रतिनिधित्व अनावश्यक डेटा स्थानांतरण से कैसे बचाता है। अंत में ट्री, ग्राफ और सॉर्टिंग में समस्या के अनुरूप एल्गोरिथमिक संरचना। उन्नत भागों में पुस्तक यह स्थापित कर दी है कि जटिल समस्याओं के लिए केवल डेटा को संग्रहित करना पर्याप्त नहीं है, उसके संबंधों को सही संरचना में व्यक्त करना भी आवश्यक है। ट्री पदानुक्रम को दर्शाते हैं और बाइनरी सर्च ट्री जैसे रूप क्रमबद्ध खोज, जोड़ और हटाने के लिए आधार देते हैं। बैलेंसिंग की आवश्यकता इसलिए उभरती है कि यदि ट्री एक तरफ झुक जाए तो अपेक्षित लघुगणकीय लाभ रैखिक खोज में बदल सकता है। प्राथमिकता क्यू और हीप यह दिखाते हैं कि हमेशा सबसे महत्वपूर्ण तत्व को निकालने की जरूरत वाले कार्यों के लिए पूर्ण क्रमबद्धता अनिवार्य नहीं होती। ग्राफ अध्याय नेटवर्क, निर्भरताओं और मार्गों जैसे संबंधों को शीर्षों और किनारों के रूप में मॉडल करता है। ट्रैवर्सल विधियां पहुंच योग्य तत्वों को व्यवस्थित ढंग से खोजने का आधार प्रदान करती है और यही आधार मार्ग तथा कनेक्टिविटी संबंधी समस्याओं में प्रयुक्त होता है। सॉर्टिंग की चर्चा में अलग एल्गोरिदमों की तुलना केवल परिणाम के आधार पर नहीं बल्कि समय जटिलता, अतिरिक्त स्थान, स्थिरता और इनपुट की प्रकृति के आधार पर की जाती है। इस संयुक्त प्रस्तुति का प्रमुख पाठ यह है कि एल्गोरिदम और डेटा संरचना को अलग नहीं चुना जा सकता। किसी संरचना की उपलब्ध क्रियाएं ही यह तय करती हैं कि कौन सा एल्गोरिदम स्वाभाविक, तेज और बनाए रखने योग्य होगा। निष्कर्ष में, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स इन जावा उन विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जिन्हें जावा का बुनियादी अनुभव है और जो डेटा संरचनाओं को परीक्षा, साक्षात्कार या वास्तविक सॉफ्टवेयर विकास किसी भी उद्देश्य के लिए व्यवस्थित ढंग से समझना चाहते हैं। यह कंप्यूटर विज्ञान के आरंभिक पाठ्यक्रमों के लिए भी उपयोगी है क्योंकि यह भाषा के आधारभूत तत्वों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन और एल्गोरिथमिक विश्लेषण को एक ही सीखने की यात्रा में जोड़ती है। कार्यरत जावा प्रोग्रामर इसके जरिए यह समझ सकते हैं कि तैयार लाइब्रेरी कंटेनरों के पीछे कौन से ट्रेड ऑफ काम करते हैं। इस पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक किसी ऑपरेशन की लागत को पहचानना, उचित प्रतिनिधित्व चुनना और इंटरफेस आधारित कोड लिखना सीखता है। बौद्धिक लाभ इससे बड़ा है। यह समस्या को उसके व्यवहार, संसाधन लागत और विस्तार क्षमता के आधार पर देखने की आदत बनाती है। अनेक एल्गोरिदम पुस्तकों में गणितीय विश्लेषण प्रमुख रहता है, जबकि कुछ जावा पुस्तकों में कोड उपयोग पर जोर होता है। यह पुस्तक इन दोनों के बीच संतुलन बनाती है। एडीडी, जावा इंटरफेस और ठोस प्लासों की निरंतर संरचना इसे अलग पहचान देती है। साथ ही इसका शैक्षिक कोड बेस पाठक को ब्लैक बॉक्स एपीआई इस्तेमाल करने के बजाय संरचनाओं के निर्माण और सीमाओं तक पहुंचने देता है। यही कारण है कि यह संदर्भ पुस्तक और अभ्यास आधारित पाठ्य पुस्तक दोनों भूमिकाएं निभा सकती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं माइकल डी गुडरिच, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।